अनुक्रम आधुनिक कबीर पृष्ठ संख्या 1, ब्रह्म का आधुनिकीकरण पृष्ठ संख्या 40, माया का आधुनिकीकरण पृष्ठ संख्या 65, आचार का आधुनिकीकरण पृष्ठ संख्या 99, कबीर वाणी पृष्ठ संख्या 129। पृष्ठ संख्या 1, आधुनिक कबीर। कबीर 15वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे। यह काल भारतीय इतिहास में मध्यकाल कहलाता है। मध्यकालीन कबीर को आधुनिक कहना इस अर्थ में चौंकाने वाली बात लग सकती है। कबीर का व्यक्तित्व ही इतना निराला है कि उनके संबंध में कही गई हर एक नई बात चौंकाने वाली होती है, उनकी स्वयं कही गई हुई बातों की तरह। कबीर की आधुनिकता भी ऐसी ही है। आज का आधुनिक मनुष्य कबीर को अपने सबसे निकट पाता है। तुलसी, सूर, कोई उसके इतने निकट नहीं दिखता जितने कबीर दिखते हैं। किंकेगार्ड का नैतिक मनुष्य उसी सांचे का व्यक्ति है जिस सांचे के कबीर है। जहाँ तक आधुनिक शब्द की अर्थ सीमा का सवाल है, उसके अनुसार भी कवि को मध्यकालीन की अपेक्षा आधुनिक कहना संगत है। आधुनिक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। इतिहास का काल विभाजन करते समय जब उसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जैसे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो वहां आधुनिक शब्द कालखंड का अर्थ देता है। आधुनिक शब्द का यह सबसे सीधा और प्रचलित अर्थ है, लेकिन अपने पारिभाषिक अर्थ में आधुनिक और आधुनिकता देश काल की सीमा से अतीत है। यहाँ आधुनिक कालखंड का अर्थ नहीं देता, बल्कि एक सार्वभौम और शाश्वत वृत्ति का बोध कराता है। पृष्ठ संख्या 2। इस पारिभाषिक मर्यादा के अनुसार आधुनिक वह है जो परंपरित मृत मूल्यों, विचारों, रूढ़ियों और लोकशास्त्र की अन्य निरर्थक जकड़बंदियों को सीना तानकर अस्वीकार कर सके, जो समसामयिक यथार्थ के प्रति पूर्णतः सशक्त चेतना के सहारे वर्तमान जीवन की अनुभूत पहलियों को एक तर्कसंगत, वस्तुपरक, भावुकता विहीन तथा बौद्धिक समाधान देने के लिए संघर्ष कर सके, जो कथनी की अपेक्षा करनी पर अधिक बल देता हो, परंपरागत आस्था विश्वासों को आत्मा अनुभव की तुलना पर तौल कर ही स्वीकार करता हो, और यह सब करने के मार्ग में स्वभावतः आने वाली हर जोखिम को हंसते हंसते झेलने के लिए हर क्षण कमर कसे रहता हो। कबीर 100% ऐसे ही व्यक्ति थे। वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है, अतः वर्तमान के प्रति पूर्णतः सशक्त चेतना ही व्यक्ति की वह मूल शक्ति है जिसके सहारे वह भूत और भविष्य की खुली आंखों को देख पाता हो। कबीर की वाणियों का विश्लेषण, उनके द्वारा प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली का अर्थ वैज्ञानिक अध्ययन और आगे चलकर काफी व्यापक रूप से पढ़ने वाले उनके प्रभाव की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि कबीर अपने वर्तमान के प्रति पूर्णतः संसक्त चेतना वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन और जगत के यथार्थ को खुली आंखों से देखा था। आधुनिक व्यक्ति की समस्त चिंता वर्तमान के प्रति होती है। कबीर ठीक ऐसे ही व्यक्ति थे। अपने वर्तमान और अपनी धरती से उनका पांव कभी नहीं उखड़ा, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने शुद्ध दार्शनिक चर्चा के प्रसंगों में भी पांव को निरंतर धरती पर जमाए रखा। चाहे वे मन के निग्रह की बात कर रहे हों, चाहे इंद्रिय निग्रह की, चाहे वो माया की वृत्ति समझा रहे हों, चाहे राम की, सदैव वे इन सब की असलियत को वर्तमान के ताजा अनुभवों की। पृष्ठ संख्या 3। तुला पर तौल कर ही स्वीकार करते हैं। इसलिए हिंदुत्व हो या मुसलमानत्व, ज्ञान हो या अज्ञान, योग मार्ग हो या भक्ति मार्ग, निर्गुण हो या सगुण, ब्राह्याचार हो या पारंपरिक, मिथ्या मूल्य, सबके दोष और गुण को उन्होंने साफ निगाहों से देखा था, और आज के आधुनिक मनुष्य की तरह ही इस अबूझे को बूझकर बहुत दुख पाया था। अबूझे को बूझ लेने के बाद कबीर जीवन भर उस गुरु को खोज करते रहे जो उन्हें अबूझे का रहस्य समझाते। कोई नहीं मिला। वे खोजते रहे उस व्यक्ति को जिससे लग कर रहा जा सके, जो उपदेश दे सके, भव सागर में डूबते हुए को केस पकड़कर बाहर कर सके, और नहीं तो कम से कम कबीर को पहचाने। कोई नहीं मिला। ले देकर जो मिला, यह वह अनुभव किया कि कोई किसी का नहीं है, न हम किसी के हैं, न हमारा कोई है, हम सभी अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। कबीर समझता है दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, और दुनिया समझती है कि कबीर विनाश की राह पर चल रहा है। इस विनाश की राह से कोई बाह पकड़कर मोक्ष दिलाते ऐसा मिलता ही नहीं। कबीर की इसी निष्फल खोज से स्पष्ट होता है कि वर्तमान की मूल्य मूर्तता व्यक्ति की स्वार्थ से बाहर न जा सकने की अक्षमता, लोगों में वर्तमान की प्रसंग संकुलता के प्रति व्यापक अज्ञान और मनुष्य के प्रति मनुष्य की निष्प्रिय उदासीनता को उन्होंने समाज के व्यापक संबंधों से लेकर स्वयं अपने निजी संबंधों तक बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव किया था। उन्हें लगा कि उनका समस्त वर्तमान उस अंधे की तरह है जो हाथ में दीपक लेकर भी कुएं में गिरता है। पृष्ठ संख्या 4, उस बगुले की तरह है जो आसपास बिखरे हुए सत्य के मोतियों को न पहचान कर किसी बहुत मामूली सी मछली के लिए योग मुद्रा में लगाए बैठे रहता है। कबीर के मन में नाथपंथी अवधूत के प्रति बड़ा आदर था। उन्होंने जग से प्यारे अवधू जोगी से भी अपनी समस्याओं का समाधान पूछा, लेकिन अवधू जवाब नहीं दे सके। न पाड़े न कोई सहायता की, न मुल्ला ने, न मंदिर से कोई समाधान मिला, न मस्जिद से, न वेद से, न कुरान से। उल्टे पांवों की गति को हर क्षण बाधित करने वाली लोक वेद कुल की मर्यादा गले में फांसी की तरह पड़ी हुई मिली। कबीर ने जिस सत्य का साक्षात्कार किया था उसे न लोक जानता था, न वेद, न स्मृति, न पुराण। जब तब पूजा अर्चा सभी भ्रामक सिद्ध हो गए थे। उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो मोह बंधन से मोक्ष दिला सके। जिसके पास जाओ वह तुम्हारा बंधन तो काटने से रहा, अपने ही फंदों में और जकड़ देता है। सबके सब पूरी तरह बंधे हुए हैं। झूठी बात तो सच मानकर लोग उसमें बेबस ही तरह उलझे रहे हैं। धर्म और दर्शन, वर्ण और आश्रम, वेद और शास्त्र, तप और तीर्थ, व्रत और पूजा, दान और पुण्य, माया और मोह, धन और यौवन के मद से सारा समाज धुत्त है। विषय तृष्णा से संसक्त चित्त वाले ये सारे लोग कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन से भी बुरी तरह विषयों से पीछे 24 घंटे भाग रहे हैं। राजा राव, रंग फकीर, जोगी जति, सिद्ध अवधूत, काजी मुल्ला, बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, देवी देवता, पीर पैगंबर, सभी इन विषय लुप्तता से ग्रस्त और दुखी हैं। सारा संसार अज्ञान के अंधे कुएं में घिरा हुआ है। पृष्ठ संख्या 5, शरीर का गर्व, घर में रखे हुए 10 मल अनाज और बंगले में बंधे हुए 10 टकों की गर्मी, बादशाह की ओर से मिले हुए 100 गांव और लाख दो लाख की जागीर, इन्हीं के पीछे दुनिया दीवानी है। कामपरता आदमी का सबसे बड़ा रोग है। इस काम ने किस किस को नहीं ठगा है। अवसर आने पर सभी इसके सामने परास्त हो गए हैं। अहंकार, आडंबर, कथनी करनी की अघन्य दूरी, भ्रम, धर्म के नाम पर खुली लूट खटोस, हर धर्मी छल धूर्तता से समस्त समाज ग्रस्त है। सभी मात्र स्वार्थ के संगी है। जिन दिनों कबीर का आविर्भाव हुआ था साधारण हिंदू गृहस्थों में पौराणिक मत प्रबल था। देश में और भी अनेक प्रकार की साधनाएं प्रचलित थी, लेकिन कबीर ने अनुभव किया कि उसमें कहीं कोई सार नहीं है। सभी भ्रांत हैं। कोई देव पाठी है, कोई वेद पाठी है, तो कोई उदासी है, कोई मदिरा के सेवन में ही चरम साधना मानता है, तो कोई तंत्र मंत्र औषधि की करामात से ही सिद्ध बना फिरता है, कोई तीर्थ यात्री है, तो कोई धूम्रपान से शरीर को काला बना रहा है। देश में एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का है, पर हिंदू और मुसलमान में नाम का भेद है। स्वार्थपरता, माया मोह, आडंबर, क्रूरता, भ्रमग्रस्तता और विषय तृष्णा की दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं। कबीर की राय में इनमें भी किसी को दो राह नहीं मिली, न हिंदू को न मुसलमान को। जोगी जति और सन्यासी सभी उन्हें भ्रांत मिले। कबीर ने बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव किया कि पृष्ठ संख्या 6, पीर पैगंबर, काजी मुल्ला, रोजा नमाज और पश्चिम की भक्ति गलत है। देव द्विज, एकादशी, दिवाली और पूरब दिशा की भक्ति भी निरर्थक है। स्वर्ग नरक का सारा कल्पना लोक बेमानी भी है और बेमानी भी। स्पष्ट है कि कबीर ने जिनको भी निकट से देखा वह उसे मूल गुण दिखा। इतनी बड़ी बात अकारण नहीं हो सकती, अकारण थी भी नहीं। कबीर जब पैदा हुए उनके बहुत पहले से सामंती समाज का ढांचा ढीला पड़ने लगा था। वर्ण व्यवस्था शिथिल हो रही थी। परंपरागत आस्था विश्वास निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। सामंती समाज व्यवस्था में जब व्यापार का प्रसार होता है तब पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में वस्तुओं का उत्पादन खाने खर्च के लिए नहीं होता, बल्कि क्रय विक्रय योग्य माल तैयार करने के लिए होता है। सामंती समाज व्यवस्था में व्यापार का विकास संभवतः पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के लिए जमीन तैयार करता है। समाजशास्त्री दृष्टि से कबीर के जीवन काल में भारतीय समाज मूल्य मूढ़ता की स्थिति में था। सामंती समाज व्यवस्था अपनी सार्थकता खोती जा रही थी और व्यापार के सहारे पूंजीवादी व्यवस्था स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। सामंती समाज में संपत्ति का स्वामी भूस्वामी वर्ग होता है, संस्कृति और शिक्षा का काम पुरोहित वर्ग के हाथ में रहता है। समाज के शेष सदस्य खेती कारीगरी आदि के द्वारा उच्च वर्गों की सेवा करते हैं। चार वर्णों वाली व्यवस्था समाज के प्रत्येक सामंती समाज की विशेषता है। भारतीय सामंती समाज चाहे वह इस्लाम के प्रति आस्थाशील हो या हिंदुत्व के प्रति या किसी और के प्रति। पृष्ठ संख्या 7 इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता रहा है। मुगल बादशाहों ने व्यापार के विकास द्वारा इस सामंती व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया था, यद्यपि यह सब जानबूझकर नहीं हुआ था, अनजाने में ही होता गया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, जानने या न जानने से होने पर कोई असर नहीं पड़ता, जो है वह रहता ही है। विद्वानों का मत है कि मुसलमानों के कारण भारतीय जाति व्यवस्था को काफी धक्का लगा था, क्योंकि मुसलमान जिस मजहब में विश्वास रखते थे उसमें जाति के लिए कोई स्थान नहीं था। भारतीय समाज नाना जातियों का सम्मिश्रण था। एक जाति का एक व्यक्ति दूसरी जाति में नहीं बदल सकता, परंतु मजहब इससे ठीक उल्टा है, वह व्यक्ति को समूह का अंग बना देता है। भारतीय समाज जातिगत विशेषता रखकर व्यक्तिगत धर्म साधना का पक्षपाती था। इस्लाम जातिगत विशेषता का लोप करके समूहगत धर्म साधना का प्रचारक था। इस संबंध में इतना याद रखना चाहिए कि चतुर्वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में जितनी व्यापक है उतनी अन्यत्र चाहे न हो, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था हिंदुओं तक ही सीमित नहीं थी। चतुर्वर्ण व्यवस्था संसार के हर सामंती समाज की विशेषता है और इसलिए हिंदू सामंती समाज की तरह ही उतने व्यापक रूप में न सही, यह चतुर्वर्ण व्यवस्था मुसलमानी सामंती समाज में भी स्वीकृत थी। कबीर जिस चुलाहा जाति में लालित पालित हुए थे वह मुसलमानी समाज की सबसे नीची जाति थी और शेख इसमें सबसे ऊंचे स्थान के अधिकारी थे। अतः ऊपर ऊपर से देखने पर लग रहा था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था को मुसलमानों ने उसी तरह इस्लाम की प्रचारार्थ तोड़ा था जैसे वे मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा करते थे, लेकिन समाज वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात असंगत है।